पेज 171 खोल लीजिए। हाउस विलियम ने शीता ने रजीम सूरत यूसुफ का नज़मे जली। सूरत यूसुफ तीन पैराग्राफों पर मुश्तमिल है। नंबर एक, एक से दो, पहली दो आयात, इसमें तमहीद यानी इंट्रोडक्शन, नज़ूले कुरान का मकसद ताक़ुल है। ताक़ुल क्यों आया लफ्ज़ इधर? लअल्लकुम ताक़िलून, इस पे तफसीर में बहुत तफसील से बात होती है कि अरबी ज़ुबान में है ताकि ताक़ुल इख्तियार करो। तो अब आप और मैं तो उर्दू जानते हैं, तो हमें फिर इसमें इसको उर्दू में समझना है ताकि ताक़ुल इख्तियार किया जाए। इब्तदाई दो आयात तमहीदी हैं, जिनमें मुतालबा किया गया कि अरबी ज़ुबान में नाजिल किए गए कुरान पर गौर व फ़िक्र किया जाए और सूरह यूसुफ़ में बयान करदा सच्चे किस्से से इबरत हासिल की जाए, जिस किस्से को कुरान ने अहसनुल कसस का नाम दिया है। अल्लाह ताला हमें इस पे मज़ीद गौर व फ़िक्र की तौफीक अता फ़रमाए। फिर आए 3 से 101। मेरा ख्याल है अभी तक जितनी सूरतें पढ़ी हैं ना, ये सबसे तवील पैराग्राफ है। यानी 98 आयात में हज़रत यूसुफ़ का किस्सा है, यानी आप कह सकते हैं कि आलमोस्ट पूरी ही सूरत एक किस्से पे। इस पैराग्राफ के 10 ज़ेली पैराग्राफ हैं। 10 ज़ेली कहें कि यूसुफ़ की ज़िंदगी के 10 उतार चढ़ाव। कैसे, आइए देखते हैं। ज़ेली तो समझते हैं ना, सब टाइटल यानी अंडर आता है, जो उसी की कंटिन्यूशन। पहले ज़ेली पैराग्राफ आयात यानी 3 से 20 तक, आप कह सकते हैं कि 3 से 101 के 10 हिस्से करेंगे हम, ठीक है। 3 से 20 तक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब और इनके भाइयों की साजिश का जिक्र है। हज़रत यूसुफ़ ने ख्वाब देखा कि चांद, सूरज और 11 सितारे इन्हें सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को सुनाया। वालिद ने नसीहत की कि इसका तذکرہ अपने भाइयों से ना करना। यूसुफ़ के भाई इनसे हसद करते थे। सवाल पैदा होता है कि बाप ने दूसरे भाइयों के ख़िलाफ़ क्यों कहा यूसुफ़ को ये? क्या आप अपने बच्चों के दिलों में उनके बहन भाइयों के बारे में कोई नेगेटिव ख्याल डाल सकते हैं? इसका जवाब क्या है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बाप भी नबी थे। ख्वाब से बाप समझ गए कि मेरा बेटा भी नबी बनेगा और वक्त आने से पहले औलाद को आने वाले फितनों और ख़तरों से आगाह कर देना, ये अच्छे माँ बाप की पहचान है। तो इसका फिर आपका मेरा अमल क्या होगा, कैसे करेंगे? क्योंकि समटाइम हम ये बातें पढ़ के फिर कहते हैं देखे ना, हज़रत याकूब ने भी तो यही किया था ना, तो फिर हम भी यही कुछ कर देते हैं। तो इसका जवाब क्या है कि अगर आप और मैं इस चीज़ को इस तरह से महसूस करें कि हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी ही इस तरह से है कि उनको अच्छे बुरे का फ़र्क पता लग जाए, और जब पता लग जाता है फिर अल्लाह के हुक्म से वो नहीं समझते कि ऐसी कोई बात है। और दूसरी बात है कि हर वक्त तो नहीं किया ना इशारा, और यहाँ से ये भी नहीं पता चलता कि याकूब ने गुलम भी जोड़ी कहानी की, इशारा कर दिया होगा किसी से ना कहना, तो ये बात कहने में तो कोई बदअखलाकी नहीं है। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ को बहाने से जंगल ले जाकर एक अंधे कुएं में फेंक दिया और वालिद के पास एक खून लगी कमीज़ लेकर आए और कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खा लिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र जमील का मुजाहरा किया। एक तिजारती काफ़िला हज़रत यूसुफ़ को फ़लस्तीन से मिस्र ले गया और वहाँ इन्हें फ़रोख्त कर दिया। क्या पता चला कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की कहानी इन शुरू की समझे 17 आयतों में, देखिए ना, मोहब्बत का शिकार हुए ना। कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद, हर नेमत वाले से हसद ज़रूर किया जाता है। याद रखें, आपके पास कोई भी नेमत है, खाने की, पीने की, कपड़ों की, शक्लो सूरत की, औलाद की, इसको ढक छुप के रखें, नज़र लग जाती है, हसद हो जाता है, और गैर नहीं करते अपने करते हैं, सगे बहन भाइयों में हसद हो जाता है, बेस्ट फ्रेंड्स में हो जाता है, तकाबुल तो होता ही वहाँ जहाँ कोई मामला है। तो लिहाजा इस सारे से क्या पता चलता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और बेटों को कुछ नहीं कहा। सवाल पैदा होता है कि अगर उस दिन याकूब अलैहिस्सलाम बेटों को पकड़ कर पुलिस के हवाले करते, एक मुकदमा चलाते, तफ्तीश होती, तो क्या नतीजा निकलता? बेटों के लिए हिदायत का दरवाज़ा बंद हो जाता। बस दफ़ा हम अपनी ज़िंदगियों में फरीक के मुखालिफ, वो शौहर भी हो सकता है, औलाद भी हो सकती है, और भी कोई हो सकता है, उसकी ज़रा सी खराबी पे इतना ओवर रिएक्ट करते हैं कि उसके लिए फिर पलटने का रास्ता बंद कर देते हैं। समझ जाए आराम से, अक्लमंद माएँ सारा कुछ समझ रही होती हैं लेकिन बोलती नहीं है। वो बड़ी होशियार माएँ बनती है, कहती है मुझे सारा पता है तू क्या देख रहा था। नहीं, आपने उचटती नज़र पड़ गई है ना स्क्रीन पे, तो ऐसे हो जाए जैसे कुछ नहीं देखा, वरना वो बच्चा बाद में ढीठ हो जाएगा। अब माँ ने सारा कुछ तो देख लिया, तो फिर तो कल खुल के देखेगा, फिर तो कहेगा हमें देखता हूँ, आपको तो पहले ही पता मैं देखता हूँ, मेरी तो ये मजबूरी है। याद रखे, झिझक ना ख़त्म होने दें लोगों की गुनाह की, किसी रिश्ते में जहाँ झिझक ख़त्म होगी वहाँ गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने यहाँ बेटों से इतनी बात नहीं की, उनको शर्मिंदा नहीं किया। और ये होता है असल में अल्लाह पर एतमाद, कि मैं वो अल्लाह से जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, यही बात कही थी ना आगे। फिर आगे देखिए, दूसरा ज़ेली पैराग्राफ 21 से 35 तक, सरज़मीने मिस्र में हज़रत यूसुफ़ की आजमाइशों का तस्करा। हज़रत यूसुफ़ मिस्र पहुँचे, इन्हें एक अमीर आदमी ने ख़रीद लिया और घर ले गया, और इसने अपनी बीवी को नसीहत की कि इनके साथ हुस्न सलूक करें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, अमीर की बीवी इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, चुनाचे इसने दरवाज़ा बंद करके इन्हें गुनाह पर उकसाया, फिर पकड़े जाने पर उल्टा यूसुफ़ पर इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन औरत ही के ख़ानदान से आए एक आदमी ने औरत को मलामत की, औरत ने अपनी सहेलियों को बुलाकर यूसुफ़ को दिखाया, औरतें इन्हें देखती ही रह गईं और उन्होंने अपने हाथ काट लिए। बासर औरत ने यूसुफ़ को धमकी दी कि वो इसकी बात माने वरना इन्हें जेल भेज देगी। यूसुफ़ बहुत साबित कदम रहे, उन्होंने कहा मुझे कैद मंजूर है, लेकिन वो मंजूर नहीं जिसकी तरफ ये औरत मुझे दावत दे रही है। नतीजा यही निकला कि हज़रत यूसुफ़ को अपनी बेगुनाही के बावजूद जेल में जाना पड़ा। कितने सबक हैं सिर्फ इतने से हिस्से में। पहली बात देखिए कि बास लोगों का बचपन बहुत खूबसूरत होता है, जैसे यूसुफ़, लाड प्यार मोहब्बत, लेकिन अब जब जवानी शुरू हुई तो निरी आजमाइशें। कई बच्चे माँ बाप के बड़े लाडले होते हैं, एक बच्चा कोई ज़्यादा ही प्यारा होता है, कोई शक्ल से, कोई अक्ल से, कोई अकेला है, कोई बाद वाला है, कोई पहला है, कोई आखिरी है। आप देख लीजिए यूसुफ की ज़िंदगी में कितनी आजमाइशें हैं। लेकिन इन सारी आजमाइशों के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जब निखर के आगे आएंगे, वो हम आगे हिस्से में देखेंगे। लेकिन यहाँ जो एक बात आपके मेरे लिए, जो हमें अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, कि आप देखिए कि जिसको लोग ग्लैमर कहते हैं, यूसुफ ने कहा कि अल्लाह मुझे उससे तो जेल बेहतर है। बहुत सारे लोग बाहर के मुल्कों में आकर क्यों बिगड़ते हैं, ये कह के बिगड़ते हैं कि यहाँ तो सबकी गर्लफ्रेंड है, यहाँ तो होती है, यहाँ तो ये रहेगा, ये तो होना ही है, माहौल का असर, फलां का असर, फलां का असर। आप देखिए कि वहाँ तो ना माँ थी ना बाप था, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क्यों जमे रहे? क्योंकि माँ बाप के खून का असर और उनकी तरबियत का असर। कितना कुछ साल, बचपन तो 7, 8, 9 साल की उम्र का गुजरा ना सिर्फ, उसमें इतनी खूबसूरत तरबियत कर दी, बिगड़ नहीं सके। आज आप और मैं अपने बच्चों के बारे में क्या ये सोच सकते हैं कि वो इस बुरे माहौल में प्लूटेड नहीं होंगे, क्योंकि मैंने उनके ऊपर बहुत कुछ कर दी है, बहुत उनके ऊपर मेहनत कर दी। देखिए, करना तो अल्लाह नहीं है काम, कोशिश आपकी मेरी है। कोशिश के बाद अगर बच्चा बिगड़े तो माँ बाप के लिए जन्नत है, कोशिश के बगैर बच्चा बिगड़े तो माँ बाप के लिए जवाबदेही है। तो ये कहकर ना सोचें कि या तो इनको कोई मौजज़ा ही कर देगा ठीक, और कोई कुछ। मैंने कल परसों भी जिक्र किया था कि इस वीकेंड पे एक कॉन्फ्रेंस थी इधर, और मेरा अपना हमेशा ये ड्रीम रहा है कि कभी भी हम अपनी इन चीज़ों से फारिग हों तो हम यंग लड़कों के लिए या मर्दों के लिए कुछ करें। और हमेशा लोग कहते भी हैं हमें भी कि आप मर्दों के लिए कुछ करें, लड़कों के लिए करें। यहाँ कम कहते हैं, दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा कहते हैं। लेकिन जब मर्दों और लड़कों के लिए कोई और कर रहा है तो नतीजा 25-30 मर्द, 3 गुना लड़कियाँ थी वहाँ, और एक जो हॉल था उनका, उन्होंने उसके 1/4 मर्दों को दिया हुआ था, और मेरा ख्याल है जो बाकी उसका जो चौथा हिस्सा था वो उनको दिया हुआ था। औरतें फिर हर कल्चर में औरतें ही आगे हैं और मर्द केयर नहीं करते, ये आज हमारा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। कम से कम 4 जुम्मे आप अपने बच्चों को किसी एक ऐसी मस्जिद में भेजें जहाँ तरतीब के साथ कुरान को बेस करके, हदीस सुनाकर उनको मोटिवेट किया जाए। कम से कम हफ्ते के ये 4 लेसन तो फ्री है ना। शर्त एक है कि खुतबा शुरू होने से पहले बच्चा वहाँ मौजूद हो और नमाज के बाद उठे। इसकी कोशिश करें, इसके लिए दुआएं भी करें, कोशिश भी करें। आज के दौर में मैं जो फील कर रही हूँ कि हम बहुत हैंड्स अप हो चुके हैं, नहीं सुनते नहीं, मानते नहीं, आते नहीं, हमारे साथ जाते नहीं, हम कहेंगे तो करेंगे नहीं। देखिए, डरिए नहीं, दोस्ती इतनी कर लें, प्यार इतना कर लें कि वो आपकी बात ज़रूर माने। फिर उसके बाद देखिए, 36 से 42 में तीसरा पैराग्राफ है, यूसुफ़ की जेल में इशाते तौहीद और दावत का जिक्र। जेल में हज़रत यूसुफ़ को दो और कैदियों की रिफाकत नसीब हुई, उन्होंने एक ख्वाब देखा और हज़रत यूसुफ़ से ताबीर पूछी। हज़रत यूसुफ़ ने इन्हें अकीदे तौहीद की दावत दी और ख्वाब की ताबीर बयान की। इनमें से एक आदमी जेल से छूट गया, इससे हज़रत यूसुफ़ ने कहा, तुम मेरा जिक्र बादशाह से करना जिसके पास तुम जाकर मुलाजमत करोगे। अब यहाँ फिर नोट कीजिए एक चीज़, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में, आप अपनी आज की ज़ुबान बोले, हालात के थपेड़े खा रहे हैं, लो जी पहले तो माँ बाप के घर से बिछड़े, चलो कोई बात नहीं थी, अजीज़े मिस्र के घर में इज्जत से रहे, अब तो जेल में आ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम डिप्रेशन में क्यों नहीं चले गए, उनको अंग्स के दौरे क्यों नहीं पड़ गए, इतना होश कायम कि जेल में जाके तौहीद की दावत दे रहे हैं, ये भी एक अजीब कहानी है। एक और भी चीज़ जो मैंने इस दौर का तोहफा देखी है, सेल्फ कॉन्शियस है, मैं मुझे मेरे साथ मेरी ज़ात, मैं खुश मैं दुखी, मैं बीमार मैं परेशान, मेरी ज़ात, मुझे क्यों कहा, मैं बकरी की तरह बोलते रहते हैं, बैठो किताब पढ़ो, नहीं ध्यान नहीं रहता, तवज्जो बढ़ जाती है, नहीं हम तो क्लास में होके भी क्लास में नहीं होते, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। याद रखिए ये बहुत बदनसीबी की बात है कि अल्लाह बंदे को फारिग भी कर दे दुनिया के झंझटों से, फिर भी वो अल्लाह की किताब न सीखे, ये सिर्फ नफ्स होता है, ये सिर्फ शैतान होता है। ये जो आपको भाग दौड़ लगी हुई है ना, ये बड़ी बबरकत है, उठना बैठना जाना करना, ये भी कर लूँ, आज आप घर बैठे आपके 10 जगह जोड़ों में दर्दें निकलेंगी। तो ये चीज़ कि जब हमें थोड़ी छुट्टी मिलती है ना, तो हम फिर पूरी लेना चाहते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर ये नहीं लगता कि ये अपने हाल पे रहम खाते हैं। आप अगर अपनी ज़िंदगी में खुद पे रहम खाना छोड़ दें, तो आप बहुत कुछ कर जाएं। अपने आप को यकीन दिलाएं, मुझे कोई बीमारी नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैंने तो आज तक दुख का नाम तक नहीं सुना, वो होती क्या चिड़िया, होती है कि होता है, फिर आप अल्लाह का काम करेंगे बेनियाज, दुख से सुख से खुशी से। हमें या मसरूफियात रोक लेती हैं, मसरूफ पड़े हैं, या दूसरी तरफ हमें तन्हाई मार देती है, कोई नहीं है जी बास, तो आप काम कब करेंगे, आप दीन कब सीखेंगे। वो कहते हैं ना कि ऊंट पे बैठ जाओ कहते हैं कोहान का डर है, कश्ती में बैठ जाओ तूफान का डर है। अब मुझे बताएं कि ना आप ऊंट पे बैठ के सफ़र करेंगे, ना कश्ती पे सफ़र करेंगे, आपको जहाज़ में बैठे आप कहेंगे मुझे डिप्रेशन का डर है कि मैं जहाज़ में बंद ना हो जाऊंगी, तो फिर आप सफ़र नहीं करेंगे। यूसुफ की ज़िंदगी मुझे तो हमेशा अपने लिए एक रोल मॉडल लगी है, कितने भी थपेड़े पड़े उनको लेकिन काम नहीं छोड़ा, और साथ ही साथ बेदाग जवानी, अल्लाह अकबर। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद फिर भी यूसुफ को बार बार आजमाइश पड़ रही है, हम होते तो क्या कहते, अल्लाह जी मैं तेरा की किता, अल्लाह जी मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे बताएं मैंने कोई गुनाह किया ज़िंदगी में, ये आप मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हैं, नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह, ये तो टोन ही नहीं, अच्छी बात कहाँ अच्छी होगी, बस खुश रहें राज़ी रहें अल्लाह से। फिर आप देखिए आए 36 से 42 में, यूसुफ की जेल में ये जो बात हुई, और उधर ही अल्लाह ने उनके लिए एक चमक दिखा दी, कहते हैं ना आफ्टर एवरी टनल देर इज़ लाइट, टनल में होते हैं तो हमें लगता है ज़िंदगी बंद हो गई घुटन, लेकिन जब वहाँ से निकल रहे होते हैं तो एक हराइज़न होता है। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है, जब आप किसी जगह स्टक हो गए ना, तो आगे देखिए देर विल बी अ बीम ऑफ लाइट देर, वहाँ एक रोशनी की किरण होगी। ये वो लोग हैं जो ऑप्टोमिस्टिक होते हैं, जो हमेशा अंधेरों से रोशनियों पे आते हैं। हम कहते हैं फंस गए, आप कहेंगे फंसेंगे ताकि बाहर और खुले, फंसेंगे नहीं तो निकलेंगे कैसे। फिर इसी तरह आप देखिए यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने असबाब इस्तेमाल किए, उस आदमी को क्या कहा कि मेरा जिक्र बादशाह से करना, लेकिन वो भूल गया, तो कोशिश की जा सकती है, लेकिन याद रखे कि होना काम तब है जब अल्लाह ने आपका नसीब बदल दें। फिर देखिए आयत 43 से 57 में, बादशाह है मिस्र के ख्वाब और ख़जाने मिस्र पर यूसुफ जैसी सालेह क़्यादत की तायुनाती का बयान, यानी यूसुफ नॉमिनेट हो गए बग़ैर इलेक्शन में खड़े, 10-10 करोड़ रुपया लगाए, वज़ीर ख़जाना बन गए, क्या बात है यूसुफ की। जब अल्लाह ने आपको कुछ देना होता है ना, तो कोई आपसे ले नहीं सकता, तो मैं मुतमईन हूँ, कर लो जो कर, जाओ सारे मेरे खिलाफ हो जाओ, सारे मेरे खिलाफ जाके एजिटेशन करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और जाके गवर्नमेंट को कह दो, पर मेरे रब ने जो मुझे देना है वो मुझे देना है, कितना सुकून आ जाता है। हम सारा वक्त खौफ सदा रहते हैं, मेरे खिलाफ ना कर दे वो, उसको ना मेरे बिगाड़, मेरे मियाँ के खिलाफ ना, मेरे मियाँ को मेरे ना कर दे, ओए छोड़ो ये बहुत छोटी बातें हैं, बड़े कामों की फिक्र करो। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बादशाह ने ख्वाब जब देखा, अहले दरबार से ताबीर पूछी। इस वक्त मुलाजिम को याद आया कि ख्वाबों की बेहतरीन ताबीर तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बता सकते हैं जो कैद खाने में। यूसुफ ने ताबीर बताई, बादशाह खुश हुआ, इसने फैसला किया कि इन्हें अपना मुआविन बना ले, कौन यानी अपना पर्सनल सेक्रेटरी हजरत यूसुफ ने जेल से इस वक्त तक निकलने से इनकार कर दिया जब तक इन पर लगाए गए झूठे इल्जाम से बरात ना हुई, यानी उनको बरी ना कर दिया गया। औरत ने अपनी गलती और यूसुफ की बेगुनाही का इकरार किया। इस तरह यूसुफ जेल से छूट कर मिस्र के हुक्मरान बन गए। यहाँ से क्या पता चलता है? सच को आँच नहीं है, और सच वो जो सर चढ़ के बोले। याद आती है आयतें? यहाँ पे क्या है? पारे कैंड है। कहने लगी, ये मैं ही थी जो यूसुफ को रिझाती थी अपने लचनों से। और उधर शौहर के सामने क्या कह रही थी? क्या जजा होगी उसकी जो तेरी बीवी पर डोरे डाले। देख लीजिए फिर वही जुबान जहां से आपके खिलाफ बातें निकल दी है ना, इंशाल्लाह आपके हक में बातें निकलेंगी। शर्त बीच में सब्र की है और अल्लाह की रजा पर राजी रहने की है। फिर पांचवा टॉपिक 58 से 68 तक। बिरादरा ने यूसुफ की मिस्र में पहली आमद का जिक्र और यूसुफ अलैहिस्सलाम का बिन्यामीन को फलस्तीन से मिस्र लेकर आने का मुतालबा। फलस्तीन में कहत पड़ा। बिरादरा ने यूसुफ पहली मरतबा मिस्र आए बादशाह से गल्ला मांगा। यूसुफ ने इन्हें पहचान लिया लेकिन वो इन्हें पहचान ना सके। यूसुफ ने इनके साथ एहसान किया और कहा, अगली दफ़ा अपने साथ अपने भाई बिन्यामीन को भी ले आना। वो फलस्तीन पहुंचे। वालिद याकूब ने दूसरे बेटे बिन्यामीन को भेजने में पसोपेश किया, लेकिन जब उन्होंने पुख्ता कसम खा ली तो बिन्यामीन को मिस्र रवाना करने पर आमादगी जाहिर कर दी। ये होते हैं हालात के उतार चढ़ाव। अब कहानी पलटने लगी है ना। कल वो जो बड़े बने, आज वो छोटे बनेंगे। वैसे ये बात जिंदगी में जब बंदे को अमली तौर पे भुगतनी पड़े ना, तो उस वक्त उसको यकीन होता है कि अल्लाह के वादे कितने सच्चे हैं। कल क्या हालात थे, नहनो उसबा, हम बड़े, हमारा बड़ा गिरोह, और आज वही यूसुफ के सामने खड़े होकर कहेंगे कि तसद्दक अलैना, हम पे सदका ही कर दो। फिर आयत 69 से 79 में बिरादरान ने यूसुफ की मिस्र में दूसरी आमद और बिन जमीन को रोकने के लिए इलाही तदबीर का बयान। बिरादरान ने यूसुफ बिन जमीन को लेकर दूसरी मरतबा मिस्र पहुंचे। एक तदबीर के जरिए यूसुफ ने अपने सगे भाई बिन जमीन को रोक लिया। फिर आयत 80 से 87, बिन जमीन को रोक लिए जाने पर बड़े भाई को गैरत और हजरत याकूब के सब्र जमील का तस्करा है। बिन जमीन के रोक लिए जाने पर भाइयों ने बाहमी मुशावरत की, यानी मशवरा किया। फिर ये फलस्तीन वापस पहुंचे, हजरत याकूब से इसका जिक्र किया। दूसरे बेटे से महरूमी के बाद भी हजरत याकूब ने सब्र जमील का मुजाहरा किया। इन्हें यूसुफ से बहुत मोहब्बत थी लेकिन अल्लाह पर कामिल तवक्कुल किया करते थे। बेटों को हुक्म दिया कि मिस्र जाकर इन्हें तलाश करें, असबाब इस्तेमाल कीजिए। फिर आयत 88 से 92 में बिरादरा ने यूसुफ की सरजमीन मिस्र में तीसरी आमद और इनके एतराफ़ गुनाह का तस्करा है। बिरादरा ने यूसुफ तीसरी मरतबा मिस्र पहुंचे, यूसुफ से एहसान के तालिब हुए। इस मरतबा हजरत यूसुफ ने हकीकत बता दी और अपने आप को जाहिर कर दिया। भाइयों ने माफ़ी मांग ली। और आयत 93 से 98 में यूसुफ की कमीज़ के मोजे और याकूब अलैहिस्सलाम के इस्तग़फ़ार का बयान है। हजरत यूसुफ ने अपनी कमीज़ भाइयों को दी कि इसे वालिद के चेहरे पर डाला जाए, मौजज़ाना तौर पर इनकी बिनाई लौट आएगी। काफ़िला मिस्र से फ़लस्तीन की तरफ रवाना होते ही इधर फ़लस्तीन में हजरत याकूब कहने लगे कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। कमीज़ वालिद के चेहरे पर डालेगी और इनकी बिनाई लौट आई। फिर आयत 99 से 101 में बिरादरा ने यूसुफ की वालदैन के साथ बग़र्ज़े हिजरत मिस्र में चौथी मरतबा आमद का बयान है और हजरत यूसुफ के शुक्र का तस्करा है। बिरादरा ने यूसुफ ने अपने वालिद से माफ़ी मांगी कि उन्होंने यूसुफ को एक खुश कुएं में फेंक दिया था। वालिद ने इन सब की मगफरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ की। फिर तमाम भाई अपने वालिद, अपनी वालदा और अपने बीवी बच्चों के साथ मुस्तकिल हिजरत की गरज से मिस्र मुंतकिल हो गए। यूसुफ ने वालिद वालदा को अपने साथ बिठाया, यानी दोनों को। भाई मती फरमान हो गए। इस मौके पर यूसुफ ने कहा, ये मेरे इस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने कई साल पहले देखा था। चांद, सूरज और 11 सितारे मुझे सजदा करें। इस मौके पर यूसुफ ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए दुआ की कि इन्हीं ने इसे बादशाहत से नवाजा, ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया। अल्लाह ताला ही दुनिया और आखरत में इनका वली और सरपरस्त है। मुझे बंदगी की हालत में मौत देना और नेक लोगों के साथ शामिल करना। क्या खूबसूरत अंडर यूसुफ का। आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ऊपर मुझे वो एक असूल याद आ रहा है जो शायद आपको याद हो। हमने नूरुल नूर के जो हमारे लाइफ मैनेजमेंट के सेशंस थे उसमें किया था, विन विन, सात चीज़ें, यानी डेल कार्नेगी की बुक सेवन हैबिट्स ऑफ दी सक्सेसफुल पीपल, उनमें से एक आदत क्या थी, विन विन, तुम भी जीतो हम भी जीते। ज़िंदगी में बहुत दफ़ा इंट्रैक्शन होता है और हम जीतना चाहते हैं, लेकिन अगर जब सामने खड़ा ही अपना बंदा, तो उसके मुकाबले में जीत के आपको क्या मिला? अगर आप जीते तो आपको अपनी जीत की खुशी होनी चाहिए, अगर आप हारें तो आपको अपने भाई के जीतने की खुशी होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए कि हम ये चाहते हैं अमूमन कि सब हमसे प्यार करें, दिल यही चाहता है ना, तो क्या नफ़रतें दे के प्यार होगा, दिल तोड़ के प्यार होगा, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के प्यार होगा? कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आ जाए कि आपको सताने वाला, आपको दुख देने वाला आपके सामने कटहरे में खड़ा हो, आप कह दें ला तसरीब अलैकुम अल यौम, फिर आप दिल जीतेंगे। दिलों का जीतना असल बात है। आप अपनी डेथ बेड पे सोचें खुद को, आपके इर्द गिर्द लोग क्या बातें कर रहे हैं, और आपकी मौत की खबर सुनकर लोग क्या बातें करेंगे, क्या करना है दुनिया से, क्या लेकर जाना है, कितने झगड़े हैं आज आप यहाँ बैठे बैठे सोचें ज़रा, कितने झगड़े हैं, कितने गिले हैं, कितने शिकवे हैं। है कोई खुशकिस्मत उस सहाबी की तरह कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कल सुबह जो यहाँ से गुजरेगा ना वो जन्नती है, ना मौत ना नजा ना कब्र ना हशर ना पुल सरात, कुछ नहीं, और जन्नती बन गए, बड़ी बात है भाई, ये तो सारे स्टेप्स ही ओवरलुक हो गए। और जो गुजरे तो पूछा भाई सुनाओ क्या करते हो, कहा बस दिल में किसी के लिए रंज नहीं है, जो अल्लाह ने कर दिया वही ठीक है। आज भी ऐसे बन गए तो देखे, फौरन मिट्टी पाओ, जिसने का किया जिसने का सबको एडवांस माफी, तोड़ लो दिल, कर लो बातें, छोड़ दो साथ। हमें अल्लाह ने कितना किया हुआ है, हमें कितना किया हुआ है, यकीन करें जो मैं लोगों के दुख सुनती हूँ ना, अल्लाह जानता है मेरा दिल फटने लगता है। मुझे और ज्यादा अपनों पे प्यार आता है कि अल्लाह मेरे साथ तो ये मसली कोई नहीं, और अल्लाह पे प्यार आता है, अल्लाह तूने मुझे तो इस नजमाइशों में नहीं डाला। और कितनी अच्छी अच्छी औरतें, कितनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ, कितनी उनकी नाकदरियाँ होती हैं, मारे खाती हैं, जरूरत है किसी की आपको मारे खाती हैं, क्योंकि जी ये मुझे छोड़ दे, मैं कहती एक दफ़ा उसको कह दो छोड़ो मुझे, मैंने भी नहीं रहना तेरे साथ, सीधे हो जाएंगे। आधे से ज़्यादा इस वक्त हमारा जो सोशल सेटअप बिगड़ा हुआ है ना, सिर्फ वजह के मर्दों को बताने जाना किधरे, नहीं इसको जूतों के हार पे ना के रखूं या जूतों में मसलूं, जाना एक दफ़ा ऐसे मर्द को कह दो छोड़ो मैंने नहीं तुम्हारे साथ रहना, अगर इसका घर टूटेगा उसका भी टूटेगा, उसको रोज़ गर्म रोटी मिलती है, साफ़ कपड़े मिलते हैं, घर आता है चौधरियों की तरह खा पी के सोता है, सुबह जाता है, उसको भी एक मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है। ये हमारी तरबियत की कमी, अपनी बेटियों को इस काबिल करके जाएं कि वो ना जालिम बने ना मजलूम बने। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिसूई इल्ला मन जुलिम, तो अल्लाह सबको सीधा करते हैं। फिर आगे आखिरी हिस्सा है आयत 102 से 111 का, जिसमें कंक्लूजन है, मुशरिकीने मक्का और अक्वामे आलिम से मुतालबा किया गया कि वो हज़रत यूसुफ़ के क़स्से से इबरत और नसीहत हासिल करेंगे। क़ुरैश को नागहानी अज़ाब की धमकी दी गई। मुशरिकीने मक्का का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ सलूक बिल्कुल इसी तरह था जिस तरह बिरादरान ने यूसुफ़ का हज़रत यूसुफ़ के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शाबे अबी तालिब में 3 साल के लिए मख़सूर कर दिया गया था। रसूलुल्लाह को हिदायत की गई कि वो भी यूसुफ़ की तरह दावत तौहीद का काम आला बसीरा जारी रखें। मुशरिकीन पर यह बात वाज़ेह की गई कि माजी के तमाम पैगंबर भी इंसान ही हुए हैं, इसलिए इन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम कर लेना चाहिए, और गौर व फिक्र से काम लेकर उलुल अलबाब यानी अक्लमंद बनकर कुरान पर ईमान लाना चाहिए, जो अहले ईमान के लिए हिदायत और रहमत है। बहुत ही प्यारा एंड है सूरत का, और इसमें ख़ास तौर पर नबी सल्लम को फिर जो तसलियाँ दी गई हैं। तो सारी सूरत का फिर मज़मून क्या निकला कि रसूलुल्लाह को फ़तह मक्का और कामिल इक़्तदार व ग़लबा इस्लाम की बिशारत दी गई। कुरैश मक्का बिरादरान यूसुफ़ की तरह एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम व करम पर होंगे। अक्लमंदों को तारीख़ से इबरत हासिल करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इलल्लाह अला बसीरत इनको कबूल करना चाहिए, यानी मैं तुमको अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ इसको कबूल करना चाहिए। तो आप देखिए कितना बीच का फ़र्क है ना यूसुफ़ के और नबी सल्लम के दौर का, लेकिन एक ही मॉरल दोनों का मिलता है कि आपने भी अपने दुश्मनों को माफ़ किया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी कर दिया, आपको भी हालात की मुख्तलिफ चक्कियों से गुजारा गया, उनको भी गुजारा गया। वो जेल में रहे तो वो गारे सौर में रहे। बहुत सारी मुमासलतें हैं। जब तफसीर की थी तो इसको हमने देखा भी था कि नबी सल्लम की ज़िंदगी और यूसुफ़ की ज़िंदगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये सूरत पूरी हुई। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।